खुदावन के मुकद्दस और पाक नाम में आज की सुबह में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी तरबियत के लिए चंद एक बातें सीखें, हमने बहुत खूबसूरत ज़बूर गाया जो सच्चाई से पुर है, जो खुदा के वादों के बारे में बयान करता है कि खुदा वफादार है। बेशक हम वफादार रहें ना रहें, वो हमसे वफादार रहता है। स्वयं उस पाक और वफादार और अब्दी खुदा के हजूर झुकें और उससे उसकी हिकमत, उसकी दनाई और खुदावन से तर्स और माफ़ करने की रूह मांगे, ताकि खुदावन यीशु मसीह से दुआ करें कि खुदावन हमें तुझ जैसा तरस दे, ताकि हम एक दूसरे पर तरस खाएं। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम सब तेरे हजूर आते हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके कफारे के लिए और कादर मुतलक खुदा पाक रू की कुदरत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम जो कुछ भी सीखें कलाम खुदा के इन वर्कों में जो दर्ज किया गया है, ताकि हम हौसला, तरबियत, नसीहत, खास कर तुझ जैसी मोहब्बत करना सीखें, तुझ जैसा तर्ज एक दूसरे के लिए, तुझ जैसी एक दूसरे के साथ मेहरबानी, नरम मजाजी और तेरे नक्शे कदम पर चलें। यीशु मसीह के नाम में हम सबको संभाल और जो कुछ भी सीखें बरकत का बास रहे, और जो नहीं आ सके उनको बेदार कर। खुदा पाक रू, तू उनके दिलों को तू छू, यीशु के नाम में आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों 2 बाप उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे और आज 2 बातें सीखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह ने जो काम किया है उसके पीछे जो कुदरत, जो ताकत थी वो आज हम सब के लिए मौजूद है, और वो कुदरत और ताकत चाहती है कि हम मसीह के नक्शे कदम पर चलें। सो इफिसियों 2 बाप उसकी 13वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। और खुदा का बंदा पालूस कहता है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। 14वीं आयत, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हमने पिछले दिनों में सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी सुलह है, हमारा वो ऐसा वसीला है जिसके बायस हमें खुदा तक पहुंचने की कुदरत हासिल हुई। उस खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से हम क्या ठहरें? पाक और बेऐब और बेअल्जाम खुदावंद की हजूरी में, और जिसे कह सकते हैं कि उसने हमें मुकद्दस किया। और उसी खुदावंद की सुलह के वसीला से, उस सुलह के पैगाम को कबूल करने के वसीला से हम क्या बने? उसका बदन बने, हम एक हो गए। और उसने वो जुदाई की दीवार जो बीच में थी ढा दी, और उसने हम सबको एक कर लिया, जिसके बारे में खुदा का बंदा पालूस रसूल मेरे साथ निकालते हैं। जब आप गलतियों 3 बाप उसकी 27वीं और 28वीं आयत में, तो वो बयान करता है, लिखता है इस सच्चाई को, इस वाकया को, उस रूहानी हकीकत को, उस रूहानी काम को जो अंदरूनी तौर पे, पशीदा तौर पर वकू होता है, वजूद में आता है, और वो सच्चाई बरहक है जो हमारे और खुदा के दरमियान रिश्ते में क्या होती है, वजूद में आती है, जो सरगर में अमल होती है या जिसका किसे अंजाम दिया जाता है। सो गलतियों 3 बाप उसकी 27वीं आयत में खुदा का बंदा पालूस कहता है, और तुम सब जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, और ये वो सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का यानी कि उसे कबूल किया और मसीह को पहन लिया यानी कि उसकी रास्तबाजी को अपना लिया, ये कौन है? वो तमाम जिसमें हर एक कबीला, हर एक जबान, हर एक खानदान, किसी भी कबीले से, किसी भी मुल्क से हो। 28वीं आयत में पालूस कहता है, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यही हुआ, पालूस रसूल कहता है, क्योंकि वो हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हर तरह के तसव्वुर को, हर तरह की वजह को, हर तरह के गुनाह को, हर तरह के सबब को, हर तरह की जात को, हर तरह के कबीले को, हर एक जुबान बोलने वाले को, खा वो बादशाह हो, खा वो गुलाम हो, खा वो यूनानी हो, यहूदी हो, अब्रानी हो, किसी भी मुल्क, किसी भी कबीला, किसी भी नस्ल से हो, यीशु मसीह पर ईमान लाने से वायस वो क्या बन जाता है? मसीह का बदन एक हो जाता है। तो ये आपकी तरफ, आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ और आपको आज उन दो बातों के बारे में सिखाना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किया तो वो हमारे लिए क्या ठहरा? नमूना, मिसाल, ऐसी शानदार मिसाल जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग किसी ना किसी को अपनी जिंदगी में अपना पसंदीदा क्या रखते हैं, मिसाल समझते हैं। कोई कहते हैं मैं फलां पादरी जैसा पैगाम देना चाहता हूँ, कोई कहते हैं कि मैं फलां अदाकार जैसी एक्टिंग करना चाहता हूँ, कोई कहते हैं कि मैं पालूस जैसा बनना चाहता हूँ, पालूस की जिंदगी में उन अजीब कामों को देखते हुए मैं पालूस की तरह गवाही देना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं दाऊद की तरह प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं एलिया की तरह अजीब अजीब काम करूँ, और कुछ लोग चाहते हैं कि खुदावंद मुझे अलीशा जैसा दुगना मसा दे। सो हर एक की कोई ना कोई ख्वाहिश है कि वो किसी ना किसी जैसा बने, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें क्या फरमाती है? बाइबल मुकद्दस कहती है ईमानदारों से कि मसीह जैसे बनो। मसीह हमारे लिए नमूना है, ऐसा नमूना, ऐसी मिसाल जो बाबरकत है, जो गुनाह से क्या है, पाक है, जो ऐसी मिसाल है जो दुनिया के लोगों से कहीं शानदार है, अदाकारों से कहीं बढ़कर। सो मेरे साथ एक हवाला निकालें, आज हम दो बातें सीखेंगे कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है और जब चलेंगे तो फिर क्या फल जाहिर होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा जिंदगियां बदल देने वाला होगा। तो पहला पत्रस उसका दो बाप मेरे साथ निकालें, और पत्रस खुदावंत का बंदा, पत्रस लिखते हुए यीशु मसीह की जिंदगी के वाकयात, उन सच्चाइयों को, उस हक को जो उसने अपनी आंखों से देखा, उस सच्चाई के बारे में जो उसने यीशु मसीह के साथ रहते हुए सीखी, उस हकीकत के बारे में जो उसने जानी, उन भेदों को वो लिखते हुए कहता है, पहला पत्रस दो बाप उसकी 21वीं आयत में, और तुम उसी के लिए बुलाए गए हो। वो यरूशलेम की कलीसिया को कहता है, तुम इसीलिए उसी इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए? कि मसीह की नुमाइंदगी करो, कि मसीह के पीछे चलो, ताकि मसीह जैसी जिंदगी बसर करो। और ये किस तरह होगा? जब हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे। सो 21वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे, आपके लिए, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते गुनाह उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। मसीह हमें एक नमूना, एक मिसाल, एक रास्ता, एक हमारे लिए अजीम नमूना छोड़ गया है कि उसके नक्शे कदम पर चलें। और क्या लिखा है? यीशु मसीह का नक्शे कदम और उसका नमूना क्या है? 22वीं आयत, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मुकर की बात निकली। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, उसने गुनाह नहीं किया और फिर भी कोई उसके मुंह से फरेब देने वाली बात नहीं निकली। और 23वीं आयत में लिखा है, और ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। यीशु मसीह जब लोग उसे बुरा भला कहते थे तो उसके जवाब में यीशु मसीह उनको गालियां नहीं देता था, जैसे बहुत दफा हम करते हैं। अगर कोई हमें मार थोड़ा सा बुरा भला कह दे, हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, तो हम अपने गिर्द अपनी बचाव की दीवार बना लेते हैं और अपने ऊपर कीचड़ उछालने वालों को, गालियां बकने वालों को या बुरा कहने वालों को हम क्या करते हैं? दुगना जवाब देते हैं। और बहुत दफा पंजाबी में कहते हैं, ठहर जा, तू जाना किथे है या तू जानी किथे है। बहुत दफा बहनों में, भाइयों में ऐसा होता है कि अगर कोई हमें बुरा भला कहे तो हम कहते हैं कि तू है कौन कि तू यहाँ से खाली बगैर इज्जत करवाए चले जाए। तो हमें मसीह का नमूना अपनाते हुए जो हमें गालियां देते हैं उनको गालियां देने की जरूरत नहीं। और जो धमकाते हैं, यीशु मसीह ने तमाम तरह का दुख उठाया और किसी को धमकी नहीं दी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालांकि यीशु मसीह अगर कुछ कहे तो उसी वक्त हो सकता था। अगर वो कहे कि आसमान जमीन पर गिर पड़े तो हो जाएगा, अगर वो कहे तो हर एक चीज उसका कहना मानेगी, लेकिन उसने ऐसा ना किया। दुख पाकर किसी को धमकाता ना दुख पाकर वो किसी को धमकाता ना था, बल्कि क्या किया उसने? बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। किसे? खुदा के हवाले करता था कि खुदावन तू मेरा इंसाफ कर, तू बदला लेने वाला है। तो आज हमें ये बात अपनी ज़िंदगी में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर रोज़ ऐसे हालातों का सामना है, घर में, घर से बाहर, कारोबार में, बाजार में, इर्द गिर्द ठट्ठों में उड़ाए जाते हैं, गालियां निकाली जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है। तो हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी से ये नमूना लेने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले खुदावंद के सपुर्द करें, उसके हवाले करें कि खुदावंद इस मसले को ले और तू जवाब दे, क्योंकि ये मेरी जंग नहीं बल्कि तेरी जंग है। खा हम खिदमत में हैं, घर में हैं, खामन हैं, बीवी हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, मबशर हैं, पादरी हैं, जो भी हैं, हम सबको अपने सच्चे खुदावंद के हजूर दे देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि खुदा का बंदा पालूस रसूल इसके बारे में भी तालीम देता है। मेरे साथ एक और हवाला निकाल लें, रोमियो, रोमियो उसका 12वां बाब। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल फिर ईमानदारों को कहता है कि मसीह जैसा रवैया रखते हुए क्या करने की जरूरत है। ये 19वीं आयत, रोमियो 12:19 आयत, ऐ अजीजो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। सो बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए बदी पर गालब आओ। यीशु मसीह बदी पर गालब आया तो हम उसकी कुदरत ने ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे साथ एक और हवाला निकालें, जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? मसीह जैसा मिजाज, मसीह जैसी सोच, मसीह जैसा हमारा रवैया होगा। फिलिपियों 2:2, उसकी पहली आयत से आपके लिए यह हवाला पढ़ूंगा, जब हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे तो पालूस रसूल कहता है, अगर ऐसा तुम करोगे तो ये मेरी खुशी, मेरे लिए खुशी की बात है, ये खुदावन यीशु मसीह के लिए खुशी की बात है, ये दुनिया के लिए गवाही का बायस ठहरेगी। और क्या लिखा है? पास अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली व दर्दमंदी है। वो कहता है कि अगर ये तसल्ली, ये मोहब्बत, रूह की शराकत, दर्दमंदी और एनी और कोई बात है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यकदिल रहो। यानी कि ईमानदारों में वो कहता है इत्तफाक होना चाहिए। ये मसीह जैसी कह सकते हैं जिंदगी है। मसीहियों की जिंदगी का मकसद यह है कि यकदिल रहें, इत्तफाक रखें हर एक बात में जो मसीह के जलाल के लिए है। उसमें एक दूसरे से क्या रखें, इत्तफाक रखें, यकसा मोहब्बत रखो, एक जैसी मोहब्बत, तरफदारी की मोहब्बत नहीं जैसे बहुत दफा इंसानों में की जाती है कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अजीज है, ये दूर का रिश्तेदार है, ये इस चर्च में आता है, वहाँ नहीं जाता, और कहाँ पर क्या होता है, तरफदारी की मोहब्बत। और ऐसा बहुत दफा हमारी कलीसियाओं में हो रहा है, होता ही रहेगा जब तक यकसा मोहब्बत नहीं होगी। पालूस कहता है यकसा मोहब्बत रखो, एक जैसी मोहब्बत, तरफदारी के नहीं, एक जान रहो, यानी के सोचने का तरीका एक हो, एक ही ख्याल रखो। एक ही ख्याल क्या है, मसीह के बदन की तरक्की। लेकिन बहुत दफा क्या होता है, हर कोई अपना ही फायदा ढूंढता है, और इसीलिए पालूस कहता है तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो। तफरके यानी के लड़ाई झगड़े, हसद या किसी और बुनियाद के ऊपर कुछ ना करो। ऐसा करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पालूस रसूल जब जेल खाना में था, जब फिलिपियों का खत लिख रहा था, तो क्या हुआ, लोग पालूस के पीछे जाकर जो खुशखबरी का पैगाम उसने दिया था उसे बिगाड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, कलाम को सुनाना शुरू कर दिया। और ये कौन थे, मसीही भाई, नहीं यकीन तो मेरे साथ निकालें ही वाला हवाला। फिलिपियों 1:14 में लिखा है, पौलुस कहता है और जो खुदावन में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। बहुत से लोग थे जो दलेर होकर खुदा का कलाम सुनाने लगे, दलेरी से, ए पालूस रसूल जेल खाना में है तो हमें क्या मसला है कि मसीह के लिए मनादी ना करें। तो बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह की सही तरीके से खिदमत और खुशखबरी देना शुरू हो गए। लेकिन 15वीं आयत में लिखा है बाज तो हसद, यानी कि हसद रख के, जेलस कौन रख के जिसे कहते हैं, हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं। आज भी बहुत दफा ऐसा ही पाया जाता है, ओ फलां खिदमत कर रहा है मैं भी करूंगा, ओ ऐसा हो रहा है मैं भी करूंगा। बहुत दफा लोग अपनी बौलाहट को नहीं पहचानते, लेकिन किस बुनियाद पर करते हैं, हसद, झगड़ा और दूसरी नफा की बातों पर। और पालूस को ये सामना था, और वह कहता है झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं और बाज नेक नीति से, बाज तो नेक नीति से यानी कि पूरे दिल से कि खुदा ने मुझे कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहा। पालूस रसूल यही बात कहता है, तो एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हुआ, मगर दूसरे तफरकों की वजह से, ना के साफ दिली से बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। ऐसा ही होता है। तो पालूस रसूल कहता है तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। यीशु मसीह ने अपने आप को यहां तक का दिया, अपने आप को खाली कर दिया, फरोतन कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया कि उसने खादम की सूरत इख्तियार की। तो हमारे लिए यीशु मसीह नमूना है, हमें एक दूसरे से अपने आप को बेहतर समझने की जरूरत है। और चौथी आयत में क्या लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, यानी कि अपने हाल पर ही नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर करे, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसु का भी था। तो दो बातें, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना दे गया और हमें उसके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। जब चलेंगे तो जिंदगियां बदलेगी, कलीसियाएं तरक्की करेंगी, हमारे घराने खुशहाल होंगे और फिर मुल्क पाकिस्तान में उसकी खुशखबरी का पैगाम फैलेगा। आए हम दुआ करें कि खुदावंद हम सबको ऐसा करने की कुव्वत और ताकत दे कि हम मोहब्बत करें, हम यकदिल रहें, हम तफरकों में और बिदतों में और दूसरी बातों में नहीं बल्कि पूरे दिल से नेक नीति से खुदावंद की खिदमत करें। खुदा बाप आज के कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। सब कुछ हम सबको पालूस जैसे तेरे बेटे के नक्शे कदम पर चला हमें भी चलने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।